सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो।
ओम शांति। आपके इस सत्र का विषय है तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। मैं समझती हूं इस वक्त तो आप सभी तनाव मुक्त होंगे। हैं सभी तनाव मुक्त या किसी को तनाव है? इस समय किसी को तनाव है? अभी भी तनाव है? किस बात का तनाव है? इतना सुन रहे हैं इस बात का, वापस जाना है इस बात का जी? अच्छा अच्छा, इसीलिए तनाव है। तो तनाव आज विश्वव्यापी समस्या है। कोई कहां भी रहता है, कोई अमेरिका में रहता हो या गांव में रहता हो, कोई स्त्री है या पुरुष या बच्चे, आज सभी तनाव का अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ एक मेडिकल विंग है जो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए स्वास्थ्य मेले आयोजित करते हैं। तो उसमें एक स्टॉल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप यहाँ अपनी किसी भी बुराई का दान करें। अगर किसी में कोई व्यसन है तो व्यसन का दान करें, या कोई ऐसी आदत है जिसको वो छोड़ना चाहते हैं तो उसको दान करें। तो एक माँ अपने बच्चे को वो मेला दिखाने के लिए ले गई, और पूरा मेला दिखाने के बाद जब वो उस स्टॉल पर पहुंची जहां बुराई का दान करना था, तो उसने अपने बच्चे को कहा कि बेटा तुम चॉकलेट बहुत खाते हो, यहाँ अपनी चॉकलेट का दान कर दो क्योंकि उससे तुम्हारे दांत सड़ रहे हैं। तो बच्चे ने कहा कि माँ मुझे सोचने दो, मुझे क्या दान करना है। तो एक मिनट सोच के वो बोलता है कि मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूं क्योंकि पढ़ाई से मुझे बहुत टेंशन होता है। तो ये आज बच्चों की स्थिति है कि उनको पढ़ाई का इतना दबाव है, या कैरियर को लेकर के माँ बाप उनके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, इस शब्द का प्रयोग भी आज बच्चे करने लगे हैं। कहा गया 20वीं सदी तनाव का युग था और 21वीं सदी, आज हम सभी 21वीं सदी में हैं। यदि हमारी जीवन पद्धति यही रही तो ये 21वीं सदी एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन हो जाएगी, यानी ये भय और निराशा की सदी हो जाएगी। और इसीलिए 20वीं सदी में तनाव के ऊपर काफी अध्ययन किए गए। वैज्ञानिक हेंसले ने इस क्षेत्र में काफी कार्य किया और उन्होंने तनाव के शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। तनाव को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि तनाव हमें तब होता है जब परिस्थितियों की मांग ज्यादा है लेकिन उसकी तुलना में हमारी क्षमता कम है। दूसरे शब्दों में, जब प्रेशर्स ज्यादा है और उसकी तुलना में हमारी कोपिंग एबिलिटी कम है। स्ट्रेस इज ए फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी देर इज समथिंग आई नीड टू चेंज। ये एक प्रकार का दर्द है जो मुझे ये कहता है कि मुझे कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, और दर्द एक संदेश भी देता है कि हमें कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। परिवर्तन लाने के लिए कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में अनेक केमिकल्स बनते हैं, रसायन बनते हैं, जो ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं और एक स्लो पॉइजन का काम करते हैं। धीरे धीरे अनेक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं जिन्हें साइकोसोमैटिक बीमारियां कहा जाता है। आज 70 से 80% बीमारियां साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जहां विद्यार्थियों के ऊपर एक प्रयोग किया गया। विद्यार्थियों को 20 वर्ष की आयु में उनको दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप में वो विद्यार्थी थे जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, जो धैर्य नहीं रख सकते थे, जल्दी तनाव में आ जाते थे, अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते थे। और दूसरे ग्रुप में उन विद्यार्थियों को रखा गया जो इसके विपरीत स्वभाव वाले थे, यानी जो शांत स्वभाव के थे, धैर्य रख सकते थे, अपने मन को एकाग्र कर सकते थे, और उस समय उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। फिर इसी ग्रुप को फॉलोअप करते रहे और उनकी 50 वर्ष की आयु में फिर से उनको स्वास्थ्य की जांच के लिए बुलाया गया। तो ये देखा गया कि ग्रुप ए में ग्रुप बी की तुलना में 7 गुना अधिक मृत्यु हो चुकी थी। अगर ग्रुप बी में 5 लोगों की मृत्यु हुई तो ग्रुप ए में कितने लोगों की हुई होगी? 7 गुना माना 35 लोगों की मृत्यु ग्रुप ए में हो चुकी थी। तो इसका अर्थ ये है कि यदि हम तनावग्रस्त जीवन शैली जीते हैं तो 50 वर्ष की आयु में मृत्यु की संभावना 7 गुना अधिक हो जाती है, क्योंकि ऐसे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु 50 वर्ष की आयु में हो सकती है। तो जो अनेक प्रकार के रोग तनाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, उसमें सबसे पहला असर हमारे हृदय पर आता है। तो तनाव हृदय रोगों का एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, इसको धड़कन कहते हैं, धड़कन बढ़ जाती है। सामान्य हृदय की गति 72 से 100 प्रति मिनट होती है, लेकिन तनाव की स्थिति में ये 120-140 तक हो सकती है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो हार्ट की खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो हार्ट की मांसपेशियों को खून बराबर न मिलने के कारण उसमें एंजाइना हो सकता है या हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर पहले से हार्ट कमजोर है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। दूसरा असर हमारे पाचन तंत्र पर होता है। पाचन तंत्र में तनाव की स्थिति में एसिड ज्यादा बनने लगता है, उसके कारण हाइपर एसिडिटी हो जाती है, अल्सर्स हो जाते हैं, कई बार पेट में दर्द महसूस होता है और डायरिया हो जाता है। तीसरा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर आता है, यानी तंत्रिका तंत्र पर भी इसका असर आता है। उसके कारण हाथ पांव कांपना या मुंह सूख जाना, नींद नहीं आना, सिर में दर्द रहना या अनेक प्रकार के दूसरे दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, क्योंकि मांसपेशियां खिंचाव में आ जाती हैं तो दर्द हम महसूस करने लगते हैं। और ये भी देखा गया कि तनाव की स्थिति में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके कारण जो मस्तिष्क की खून की नलियां होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं। उसमें खून कम जाने के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन कम मिलती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति पर, एकाग्रता की शक्ति पर, निर्णय शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है और हम मानसिक कार्य को पूरी कार्यक्षमता से नहीं कर पाते। और कई बार वो खून की नलियां फट भी सकती हैं, जिसके कारण कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और बड़ी आयु होने पर अनेक मानसिक रोग, जिन्हें हम साइकोटिक और न्यूरोटिक डिजीजेस कहते हैं, वो हो सकते हैं। अब लोग तनाव से मुक्त होने के लिए कई बार व्यसनों का सहारा लेने लगते हैं, शराब पीते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आजकल तंबाकू चबाते हैं, पान मसाला मिलता है वो चबाते हैं। लेकिन इन सब से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और तनाव कम होने की बजाय और ही तनाव बढ़ जाता है। डायबिटीज जैसी बीमारी भी तनाव के कारण होती है और तनाव से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उसके कारण हमें इन्फेक्शंस जल्दी लगते हैं। लेकिन ये जो सभी बीमारियां हैं ये सभी को नहीं होती हैं, जिसका जो सिस्टम आनुवांशिकी से कमजोर होता है। मानो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हेरिडिटरी से कमजोर है तो फिर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में तनाव के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। अगर आपका हार्ट कमजोर है तो फिर हार्ट के द्वारा तनाव के लक्षण ज्यादा प्रकट होंगे। यदि किसी का नर्वस सिस्टम पहले से कमजोर है तो फिर नर्वस सिस्टम के द्वारा वो लक्षण ज्यादा प्रकट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसका कौन सा सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव है। इसको ऑफ कर देना, पीछे कर। आप सभी अपने जीवन में तनाव का अनुभव कभी ना कभी करते हैं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो चाहे हमारी बहनें बैठी हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, चाहे आप जहां कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां की समस्याएं हैं, तो आप पहले हमारे साथ थोड़ा शेयर करेंगे कि कौन सी स्थितियों में आपको तनाव होता है। तो जो आगे बैठे हैं वो ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि पीछे से तो सुनाई नहीं देगा। फैमिली वर्क, परिवार में ऐसी कौन सी समस्याएं आती हैं जब आपको तनाव होने लगता है? कोई भी बोल सकते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, माँ को सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की पढ़ाई की होती है। सही बात है। और चिल्ड्रन, हाँ जी, बच्चे कहना नहीं मानते अगर जी, घर के काम को लेकर के आपस में कोई कहा सुनी हो जाती है तब। हाँ जी, और साथ काम करने वाले अगर ठीक तरह से काम नहीं करते, अगर जिम्मेदारी से काम नहीं करते, ऐसा कह सकते हैं, इररिस्पॉन्सिबल। जब काम ज्यादा होता है, वर्कलोड ज्यादा है, समय कम मिलता है, ओवरवर्क, बॉस का प्रेशर होता है, अगर ज्यादा प्रेशर होता है बॉस का। आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और कुछ कोई बताना चाहते? पड़ोसियों की समस्या, अगर अच्छे पड़ोसी नहीं है आपके हो सकता है कोई ऐसे किसी का अच्छा भाग्य नहीं हो, नेबर्स। हाँ जी, थोड़ा आगे वाले सुनाएंगे क्या कह रहे हैं। हाँ, अगर कोई बीमार हो जाता है परिवार में, अभी भी एक भाई बता रहे थे कि इनका बेटा बीमार है, तो तनाव से बीमार होते हैं, और अगर कोई बीमार हो जाता है तो उससे भी तनाव होता है। दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। फ्रैक्शन बिटवीन रिलेशनशिप्स, अगर आपसी संबंधों में तनाव हो जाता है, संबंधों में कोई भी अहम के कारण विचार नहीं मिलते हैं, जब कोई डांटता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं आप सभी, तो ये सब हमारे जीवन की आम समस्याएं हैं। मैं समझती हूँ सभी के सामने कभी ना कभी ये बातें आती हैं। फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, कोई आश्चर्यजनक अचानक कोई घटना हो जाती है जीवन में जो आपने सोची नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति भी तनाव उत्पन्न करती है। तो इसके ऊपर एक अध्ययन किया गया। होम्स एंड राहे, ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे जीवन में घटने वाली सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने ये बताया कि जो भी घटना जीवन में परिवर्तन लाती है उसमें तनाव हो सकता है, चाहे वो खुशी की घटना ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि कोई विपरीत परिस्थिति में ही तनाव होता है, लेकिन खुशी की परिस्थिति में भी तनाव हो सकता है। तो घर परिवार में जो सामान्य घटनाएं हम सभी जिसका सामना करते हैं, डेथ इन द फैमिली, परिवार में किसी निकट संबंधी की मृत्यु, खासकर अगर जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, तो वो सबसे ज्यादा तनाव उत्पन्न करती है। दूसरा है डाइवोर्स एंड सेपरेशन, यानी यदि पति पत्नी में अहम का टकराव होने के कारण उनके विचार नहीं मिलते हैं, वो अलग अलग रहने लगते हैं, और तलाक तक यदि स्थिति चली जाती है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो ये बहुत ज्यादा आम समस्या नहीं है, लेकिन विदेशों में वहां पर ये प्रतिदिन की समस्या लोगों के सामने होती है कि आए दिन वो वहां तलाक होते हैं, तो ये भी बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है। मैरिज वैसे खुशी का मौका माना जाता है, लेकिन खुशी के अवसर में भी तनाव हो सकता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा। वो 10 लाख की लॉटरी का टिकट था, जो उनके जमाने में बड़ी रकम मानी जाती थी। भाग्य से उनकी वो लॉटरी खुल गई, लेकिन ये समाचार उनकी पत्नी को मिला। तो पत्नी ने सोचा कि मेरे पति जो है वो हार्ट पेशेंट है, वो पता नहीं इस समाचार को कैसे सुनेंगे, कहीं उन पर कोई असर ना हो जाए। तो उसने अपने डॉक्टर को फोन किया कि मैं उन्हें ये कैसे सुनाऊं। तो डॉक्टर ने कहा आप उनको मेरे पास भेज दीजिए। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने थोड़ा इधर उधर समाचार की बातें की, फिर उनको तबीयत के बारे में पूछकर कहा कि अगर आपको 1 लाख की लॉटरी निकले तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुझे घर में कुछ फर्नीचर की जरूरत है, मैं फर्नीचर खरीद लूंगा। फिर कहा अच्छा अगर आपको 5 लाख की लॉटरी निकले तो क्या करोगे। तो बोला 5 लाख की लॉटरी अगर मिलेगी तो फिर मैं एक कार ले लूंगा, मुझे कार चाहिए। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको 10 लाख की लॉटरी खुली है, आप क्या करोगे। तो उन्होंने यही समझा कि डॉक्टर मेरे से मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप क्यों मेरे से मजाक करते हैं। तो बोला नहीं मैं सच कह रहा हूं, आपको 10 लाख की लॉटरी खुली है, आप क्या करोगे। तो वो 1 मिनट सोच के बोले कि अगर ये सच है तो मैं 5 लाख आपको दे दूंगा। वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। तो यहां भी ऐसा होता है कि जिनकी शादी होती है उनके माँ बाप को अनेक प्रबंध करने पड़ते हैं, है ना। उसमें दहेज की समस्या हो सकती है, ससुराल पक्ष वालों के व्यवहार की समस्या हो सकती है। जिनकी शादी होती है उनको नए लोगों के बीच में एडजस्ट करना पड़ता है, उनके लिए बिल्कुल नया वातावरण होता है। तो ये सब बातें उसमें तनाव उत्पन्न करती हैं। तो भले खुशी भी होती है लेकिन साथ साथ उसमें तनाव भी होता है। मनी प्रॉब्लम, धन की समस्या, धन दोनों तरह से तनाव उत्पन्न करता है। जिसके पास बहुत अधिक धन है उसको धन की सुरक्षा को लेकर के तनाव होता है कि इस धन को कैसे गवर्नमेंट से बचाया जाए, चोरों से बचाया जाए। और जिनके पास धन नहीं है, जो गरीब हैं, उनको धन की कमी के कारण तनाव होता है। और आज के समय में धन को शक्ति माना जा रहा है, माना धन को सब कुछ माना जा रहा है, ऐसा कहेंगे। विज्ञान ने हम सभी को बहुत सुख सुविधा के साधन दिए हैं। तो हर एक मनुष्य चाहता है कि कम समय में मुझे वो सब साधन प्राप्त हो जाए। तो हम अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए गलत तरीके ही क्यों ना अपनाने पड़े। आपने सुना होगा कि धन गया तो कुछ नहीं गया, ऐसे पहले कहते थे, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन आज की जो स्थिति है वो है धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। यानी अगर अपना नैतिक मूल्य छोड़कर के, नैतिक चरित्र छोड़कर के भी धन कमाना पड़े तो लोग धन पहले कमाना चाहते हैं और अपने चरित्र की परवाह नहीं करते हैं। ये हम आज के जमाने में उस चीज को बिल्कुल प्रत्यक्ष देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम धन को सब कुछ समझने लगते हैं और उसके कारण भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बच्चे माँ बाप के दुश्मन बनने लगते हैं, तो ऐसा धन जीवन में तनाव ही उत्पन्न करता है। आजकल के बच्चों की समस्या, माँ बाप के सामने जो मैं सुना रही थी आपको कि कैरियर को लेकर के इतना कंपटीशन है आज सोसाइटी के अंदर कि बच्चों के ऊपर उसका बहुत दबाव रहता है। और फिर अगर बच्चे गलत संघ में चले जाते हैं, आज्ञाकारी नहीं है, या सारा दिन टेलीविजन देखने में अपना समय गुजारते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता पिता को तनाव होता है। या कई बार बहुत अपेक्षाएं रखते हैं बच्चों से लेकिन उनकी उतनी योग्यता नहीं है। एक लड़की ने एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद सुसाइड कर लिया। तो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितनी भी पढ़ाई करूं मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूं, क्योंकि वो रिजल्ट में फेल हो गई थी। तो उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप को निराश नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूं। तो ऐसे कितने ही बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं जब उनके सामने उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है। कारण कि माँ बाप की इतनी अपेक्षाएं होती हैं और जब उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। कार्य क्षेत्र पर जो समस्याएं आती हैं उसमें है, आप कार्य क्षेत्र पर पहुंचते हैं, आपके जो बॉस हैं, जो अधिकारी हैं, वो बहुत कठोर स्वभाव के हैं। आप जो कार्य करते हैं उसकी प्रशंसा तो आपको नहीं मिलती है, लेकिन जो कमी रह जाती है काम की उसके लिए आपको फटकार देते हैं। कई लोगों के सामने आपको अपमानित कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखते ही लोगों को तनाव होने लगता है। कंपीटिंग विद ए कलीग, जहां आप काम करते हैं वहां साथियों के बीच में थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन हमेशा रहता है। एक सीमा तक वो कॉम्पिटिशन हमारी उन्नति में हमें मदद करता है, लेकिन एक सीमा के बाद अगर वो बढ़ जाता है तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा कंपटीशन छोड़ देना चाहिए। कन्फ्लिक्ट विद कलीग्स, यानी साथियों के बीच में विचारों का मतभेद, जहां कार्य करते हैं अगर उनके साथ हमारे विचार नहीं मिलते हैं, फिर उनसे हमें सहयोग नहीं मिलता है क्योंकि कार्य तो उन्हीं के साथ करना पड़ता है, तो ऐसा वातावरण तनाव उत्पन्न करता है। डिमोशन यानी प्रमोशन के बजाय अगर डिमोशन हो जाता है, पद कम कर दिया जाता है या वेतन कम कर दिया जाता है, कोई पनिशमेंट मिल जाता है, तो कहते हैं कि लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कम्फर्ट्स। जो पद कम होता है वो व्यक्ति की बदनामी करता है और बदनामी से व्यक्ति को बहुत तनाव होता है। एक्सेसिव वर्कलोड कार्य का बहुत अधिक दबाव, आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, उसके कारण तनाव बढ़ता जाता है। नॉइसी एनवायरमेंट जहां कार्य करते हैं वहां का वातावरण अनुकूल नहीं है, बहुत ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, मशीनों का बहुत शोर होता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको तनाव उत्पन्न करती हैं। ओवर क्वालिफाइड ये भी आज की समस्या है कि लोग बहुत पढ़ लिख जाते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन जैसा कार्य वो करना चाहते हैं वैसा जॉब उनको नहीं मिलता है, अपने कार्य से वो असंतुष्ट रहते हैं। या कई बार ये स्थिति बनती है कि उनको नौकरी ही नहीं मिलती है और बेरोजगारी के कारण उनको तनाव होता है। न्यू जॉब कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो भी नए वातावरण के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा है कि हम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराएंगे तभी हम समझ सकेंगे कि हम तनाव में हैं। डॉक्टर के पास जाकर जब चेकअप कराएंगे तभी हम समझ सकते हैं कि हम तनाव में हैं। ये सही है या गलत है? डॉक्टर चेकअप करके बता सकते हैं तनाव है या हम स्वयं समझ सकते हैं? हम स्वयं समझ सकते हैं कि हम तनाव में हैं, क्योंकि तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं या हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम स्वयं समझ सकते हैं। और अपने तनाव को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्वयं अपने तनाव को पहचानें। मानो कोई कहता है आपके घर में एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ है, ये इतने बजे फट जाएगा, तो हम उसको छोड़ नहीं देंगे ना? पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टाइम बॉम्ब को हटा दिया जाए ताकि हमारा घर नष्ट होने से बच जाए। तो जैसे ही आप समझने लगते हैं कि मुझे तनाव हो रहा है, हमें तुरंत उस तनाव को कम करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जो उसका प्रभाव है वो कम से कम पड़े। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने तनाव को हमें स्वयं पहचानने की आवश्यकता है। स्ट्रेस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि आज की जो जीवन शैली है उसमें तो तनाव हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, यानी उसे हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। जैसे हम चलते हैं और दौड़ते हैं, ये दो स्थितियां हैं। हम दौड़ते तब हैं जब कोई इमरजेंसी होती है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, या एक्सरसाइज के लिए दौड़ते हैं, लेकिन नॉर्मली हम चलते हैं। तो तनाव की स्थिति में भी हमारा मन दौड़ने लगता है, यानी हमारे विचारों की गति बहुत तीव्र हो जाती है, उसके कारण हम अशांति, दबाव, भय और चिंता की स्थिति का अनुभव करते हैं, जो कि मन की सामान्य स्थिति नहीं है। मन की सामान्य स्थिति है सुख, शांति और प्रसन्नता। तो जब मन शांत और प्रसन्न होता है तब हम सामान्य अनुभव करते हैं। तो स्ट्रेस इज नॉट ए नॉर्मल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। फिर तीसरा है, सम स्ट्रेस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू रीच पीक परफॉर्मेंस। यानी यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं या अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, जिम्मेवारी से कार्य करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तनाव अवश्य होगा। ये सही है कि बिना तनाव के हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं? सही है? नहीं। कुछ कहते हैं सही है, कुछ कहते हैं सही नहीं है। तो वास्तव में जब हम तनाव में रहकर के कार्य करते हैं तो हो सकता है कि हम सफल हो भी जाएं। ऐसा नहीं है कि हम सफल ना हो, लेकिन उसकी कीमत हमारे शरीर को चुकानी पड़ती है, क्योंकि तनाव की स्थिति में जो कैटाकोलामिन्स बनते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं, वो तो बनते ही हैं। इसलिए ग्राफ में दिखाया है कि शुरू में हमें ऐसा लगता है कि हमारी कार्य क्षमता बढ़ रही है, लेकिन उसके दूसरे फेस में हमारे शरीर में स्टेरॉइड्स बनने लगते हैं, जिसके कारण हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थकान का अनुभव करने लगते हैं और हमारी कार्य क्षमता कम होने लगती है। तो तनाव की दूसरी स्थिति में जो हम थकान का अनुभव करते हैं वो वास्तव में हमारी कार्य क्षमता को कम करता है, न कि बढ़ाता है। इसीलिए कई बार ये देखा जाता है कि 35-40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति वो प्राप्त कर लेता है जो उसे प्राप्त करना है। धन कमाना चाहते हैं, धन कमा लेते हैं, पद प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब जब चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो गई है, शुगर की बीमारी शुरू हो चुकी है, हार्ट की बीमारी शुरू हो चुकी है। और ये सब बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ मनुष्य को जीवन भर जीना पड़ता है, क्योंकि इन सब बीमारियों को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसका कोई भी क्योर नहीं है। तो पहले 40 साल धन कमाते हैं और अगले 40 साल स्वस्थ रहने के लिए उस धन को खर्च करना पड़ता है। तो ये स्थिति होती है अगर हम तनाव में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की सोचते हैं। लेकिन यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, किसी कार्य के प्रति लगन रखते हैं, एक अंत प्रेरणा हमारे अंदर होती है, तो बिना तनाव के भी हम अपने जीवन में सफल होते हैं। नेक्स्ट, 400 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया आपके तनाव का कारण क्या है। तो 80% लोगों ने कहा कि दूसरे लोगों के कारण हमें तनाव होता है या परिस्थितियों के कारण हमें तनाव होता है। जैसे आपसे पूछा गया कि आपके तनाव का कारण क्या है, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें स्वयं के कारण तनाव होता है। जैसे एक घर में सास थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, तो उसको पूछा कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने क्या जवाब दिया होगा आप समझ सकते हैं। उसने कहा जो मेरी बहू है वो मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं करती है, वो सब काम अपने मन से करना चाहती है, इस कारण मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जो बहू थी उसको सिर दर्द रहता था, तो उसको पूछा आपको क्यों सिर दर्द हो जाता है, तो उसने कहा कि मेरे सास मेरे हर काम में मुझे टोकती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे सिर दर्द हो जाता है। ऐसे ही कार्य क्षेत्र पर अधिकारियों से पूछा गया कि आपको क्यों तनाव होता है, तो उन्होंने कहा कि आजकल वर्कर्स काम ही नहीं करना चाहते हैं, काम तो नहीं करते हैं लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करो तो वो यूनियंस बना लेते हैं, यूनियंस तो बनाते हैं फिर हड़ताल पर चले जाते हैं, तो ये सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। और जब वर्कर्स से पूछा गया तो वर्कर्स ने कहा कि मैनेजमेंट हमसे काम तो लेना चाहती है लेकिन जो वेतन और सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो नहीं देती है। तो हर एक की उंगली किसकी ओर थी, दूसरे की ओर, है ना, ये ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जब हमारी एक उंगली दूसरे की ओर होती है तो तीन उंगली हमारे स्वयं की ओर है। तो अगर एक दोष सामने वाले व्यक्ति में है तो पहले तीन दोष हमारे स्वयं में है। तो पहले किसको परिवर्तन करने की जरूरत है, हमें स्वयं को परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन हम सोचते हैं मैं बिल्कुल सही हूं, ना मैं जो सोच रही हूं मैं जो कर रही हूं ठीक है, मेरे साथ वाले को बदल जाना चाहिए। जैसे सास सोचती है मेरी बहू को बदलना चाहिए, बहू सोचती है मेरी सास को समझना चाहिए, अधिकारी सोचते हैं कर्मचारियों को काम करना चाहिए, कर्मचारी सोचते हैं मैनेजमेंट को हमारी स्थिति को समझना चाहिए। तो हर एक एक दूसरे को बदलने की सोचता है। एक बार समुद्र में एक जहाज जा रहा था, वो लड़ाई का जहाज था। समुद्र में तूफान के बाद कैप्टन ने सीमैन को बोला कि तुम डेक पे जाके देखो ये जहाज सही दिशा में चल रहा है कि नहीं। तो उसने देखा कि जहाज तो सही दिशा में है लेकिन हमारे जहाज की दिशा में ही एक दूसरी लाइट है। तो उसको समझ में आया नहीं, उसने कहा कैप्टन हमारे जहाज की दिशा में एक लाइट है, हो सकता है कोई दूसरा जहाज आ रहा है। तो कैप्टन ने कहा कि ठीक है तुम उसको मैसेज दे दो आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो क्योंकि हम इस दिशा में जा रहे हैं। तो वहां से संदेश आया कि आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो। अब ये कैप्टन को गुस्सा आ गया, उसने कहा उसको पता नहीं है मैं कौन बोल रहा हूँ, उनको मेरा नाम बता के बोलो कि मैं फलाना कैप्टन बोल रहा हूँ, आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो। तो वहां से संदेश आया कि मैं सेकंड क्लास सीमैन फलाना बोल रहा हूँ, आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो। अब इस कैप्टन को और भी गुस्सा आ गया, उसने कहा उसे बोलो ये लड़ाई का जहाज है ये अपनी दिशा नहीं बदलेगा, आपको ही अपनी दिशा बदलनी है। तो वहां से संदेश आया मैं लाइट हाउस हूं, मैं अपनी दिशा कैसे बदल सकता हूं। तो लाइट हाउस जो होते हैं समुद्र में वो जहाज को दिशा दिखाते हैं, तो जो लाइट हाउस है वो तो स्थिर होता है, वो कैसे अपनी दिशा बदल सकता है? तो जब उसको समझ में आया कि लाइट हाउस अपनी दिशा नहीं बदल सकता है, मुझे ही अपनी दिशा को बदलना है, फिर उसने अपनी दिशा को बदला। तो पूरे जीवन में हम भी ये प्रयास करते रहते हैं कि इसको बदल जाना चाहिए, इसको समझना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ना वो बदलता है ना हम बदलते हैं और हमारी समस्या बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ राजयोग में आपने 3 दिन सीखा है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सीखा है ना? हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है और जब हम परिवर्तन होते हैं तो फिर दूसरों को भी परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है और हमारा तनाव कम हो जाता है। इसलिए दूसरे ही हमारे तनाव के लिए जिम्मेवार हैं, ये एक भ्रम है। 5वां है, यू हैव टू बी वर्किंग 14 आवर्स अ डे, कॉन्स्टेंटली मीटिंग डेडलाइंस इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। यानी हमें कम समय में बहुत अधिक काम करना पड़ता है, इसलिए हमें तनाव होता है। तो वास्तव में व्यक्ति को काम से तनाव नहीं होता है, लेकिन काम के प्रति जो हमारी भावना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने काम को पसंद करते हैं, उसे रुचि से करते हैं, मन से करते हैं, तो वो काम हमें खुशी देता है। लेकिन किसी काम को आप पसंद नहीं करते, आपको मजबूरी से वो कार्य कराया जाता है, तो वो थोड़ा काम भी तनाव पैदा करता है। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और उसमें कुछ मजदूर मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहे थे, तो एक व्यक्ति वहां से गुजरा, वो ये जानना चाहता था कि यहाँ क्या बन रहा है। तो उसने एक मजदूर से ये सवाल किया, तो उसने देखा कि उसने जवाब दिया उसको, आपको दिखता नहीं है मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको लगा शायद इसका मूड ठीक नहीं है इसलिए बताना नहीं चाहता है। वो जाकर के दूसरे मजदूर से वही सवाल करता है, तो वो कहने लगा कि यहाँ भगवान का मंदिर बन रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान के लिए सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो उसने देखा कि वो बहुत खुश था, बहुत उत्साह में था, लेकिन जो पहला मजदूर था वो बड़ा ही उदास और दुखी नजर आ रहा था। अब एक ही काम दोनों कर रहे हैं, दोनों ही पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन एक उसी काम से खुश है और दूसरा उसी काम से दुखी है, क्योंकि कार्य के प्रति दोनों की भावना अलग अलग है। एक उस पत्थर नहीं तोड़ रहा है, मंदिर बना रहा है, और एक सिर्फ पत्थर तोड़ रहा है। तो हम ये देखें कि जो काम हम कर रहे हैं उसे हम पसंद करते हैं या नहीं। तो यदि हम पसंद नहीं करते हैं उस काम को, तो आप काम को बदल दीजिए। पर कई बार ये संभव नहीं होता है कि हम अपने काम को बदल सकें, तो फिर हमें स्वीकार करना होगा। इसको कहते हैं लर्न टू लव योर वर्क। जो भी काम आपको मिला है, जो भी संसार में रोल मिला है, उसे आप मन से करिए, दिल से करिए, तो वो काम आपके लिए तनाव उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर बहुत कार्य करते हैं तो उसको व्यवस्थित कर लिया जाए। जो अति आवश्यक कार्य हैं उन्हें पहले कर लें, जो कम आवश्यक हैं उन्हें बाद में करें, और जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है उन्हें हम दूसरे दिन के लिए भी कर सकते हैं। दिन 6 है, चेंज ऑफ डाइट, लिटिल जॉगिंग, अ हॉलीडे विल टेक अवे स्ट्रेस। यानी ज्यादातर अपने तनाव को कम करने के लिए हम जो साधन अपनाते हैं वो है मनोरंजन के साधन। तनाव हो रहा है, चलो बाहर पार्टी में चले जाते हैं, दोस्तों के साथ होटल में खाने के लिए चले जाते हैं, क्लब में चले जाते हैं, आजकल यही सब साधन है, या सिनेमा देखने चले जाते हैं, या जो व्यसनों में लिप्त होकर के अपने तनाव को कम करना चाहते हैं वो जाकर के शराब पीते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इस तरह के तरीके अपनाते हैं। तो कोई ना कोई तरीके अपना करके हम अपना तनाव कम करते हैं, लेकिन ये सब थोड़े समय के लिए हमारी मन की स्थिति में परिवर्तन लाते हैं। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हमें उससे नहीं मिलता है, इसलिए जैसे ही वो समस्या फिर से हमारे सामने आती है हमें तनाव होने लगता है। सो दीज आर नॉट द रियल रेमेडीज फॉर स्ट्रेस। तो वास्तव में तनाव कम करने के लिए हमें ये समझना होगा कि तनाव का मूल कारण कहाँ है। तो तनाव का मूल कारण हमारी सोच में होता है। किसी भी परिस्थिति में हम किस तरह से सोचते हैं, ज्यादातर तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में हम नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, उसका असर हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। लेकिन हमारा सोचने का तरीका हमारे कंट्रोल में है। जैसे मेरा हाथ है, मैं हाथ को जैसे चाहूं उठा सकती हूं, जब चाहूं उसको नीचे कर सकती हूं, ना, हाथ पर मेरा कंट्रोल है। ऐसे ही हमारे विचारों की दिशा को भी हम इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। हम नकारात्मक की बजाय सकारात्मक भी सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को अभ्यास देना पड़ता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है, उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अभ्यास चाहिए। एक उदाहरण के रूप में, एक बार एक बस एक्सीडेंट हुआ और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ घायल हो गए। जो घायल हुए उसमें दो ऐसे थे जिनका सीधा हाथ काट देना पड़ा, क्योंकि सीधा हाथ उनका बहुत ज्यादा उसको चोट आई थी। तो उनको हॉस्पिटल में रखा गया, वहां उनके संबंधी उनसे मिलने के लिए आए। तो जो पहले व्यक्ति से मिले तो वो बहुत दुखी था और भगवान के लिए कह रहा था कि भगवान कितना अन्याय करता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा सीधा हाथ चला गया, अब मैं कैसे काम करूंगा, मैं गरीब आदमी हूं, अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा। तो सुनने वाले भी दुख महसूस कर रहे थे कि सचमुच इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जब वो दूसरे से मिलते थे जिसका भी सीधा हाथ कटा था, वो बिल्कुल शांत था और वो भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि इतना बड़ा बस एक्सीडेंट हुआ, उसमें अनेक लोगों की जान चली गई, लेकिन मेरा जीवन बच गया। मेरा भले अभी सीधा हाथ नहीं है, लेकिन मेरा अभी भी बायां हाथ है, मैं इससे भी बहुत काम कर सकता हूं। और आजकल तो कृत्रिम हाथ लग जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद मैं कृत्रिम हाथ लगवा लूंगा, तो ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरा सीधा हाथ है या नहीं है। तो मेरे परिवार के लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा जीवन बच गया। तो वही घटना दोनों के साथ घटी है, लेकिन एक उसमें दुखी है और दूसरा उसमें अपने आप को खुश नसीब अनुभव कर रहा है। तो दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे शरीर में लक्षण भी निर्माण होते हैं। एक बार एक प्रोफेसर थे, वो नकली दांत पहनते थे। भोजन के बाद एक दिन उनका ध्यान गया कि मेरा दांत नहीं है, तो उनको लगा कि दांत कहां गया होगा। तो ख्याल आया कि दांत मैंने शायद निगल लिया है। तो जैसे ही उनको ख्याल आया कि मैंने दांत निगल लिया है, उनको बार बार वही ख्याल आने लगा, कहीं दांत मैंने निगल तो नहीं लिया। तो जैसे वो सोचने लगे इस चीज को, उन्हें पेट में दर्द होने लगा, फिर घबराहट होने लगी, थोड़ा पसीना भी छूटने लगा। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि मुझे लगता है मैंने दांत निगल लिया है, आप डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा लगता नहीं है, दांत आपके पेट में है, आप एक एक्सरे करा लीजिए। तो जब वो एक्सरे के लिए सोच ही रहे थे, इतने में उनके घर से फोन आया और उनकी पत्नी फोन पे बात कर रही थी। तो असिस्टेंट ने सुनाया कि आज साहब के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, उन्होंने दांत निगल लिया है। तो पत्नी बोलती, क्या बात करते हो, दांत तो घर में अपने टेबल पर भूल आए हैं। तो जैसे ही उनको पता चला कि दांत मेरे पेट में नहीं है, घर में पड़ा है, तुरंत उनका पेट दर्द ठीक हो गया, जो डॉक्टर के चेकअप करने से भी ठीक नहीं हुआ। तो संकल्प, जो बार बार वो नेगेटिव संकल्प कर रहे थे, उस संकल्प का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ा, क्योंकि हमारे मन और शरीर का आपस में गहरा संबंध है। और इसीलिए तनाव की स्थिति में जो हम नेगेटिव संकल्प बार बार करते हैं, उसके कारण हमारे शरीर पर असर आता है और बीमारियां पैदा होती हैं। नेक्स्ट, अब हम अपने तनाव को कम करना चाहते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। जैसे बताया आपको कि तनाव प्रेशर्स अपॉन कोपिंग एबिलिटी, ये उसकी परिभाषा है, यानी दबाव ज्यादा है और कोपिंग एबिलिटी कम है। तो यदि हम दबाव कम करें तो हमारा तनाव कम हो सकता है। दबाव यानी जीवन में आने वाली समस्याओं को हम कम कर दें। लेकिन समस्याएं हमारे हाथ में नहीं है ना, समस्याएं हमसे पूछ कर नहीं आती। आप में से कोई भाई सुना रहे थे कि अचानक कोई परिस्थिति आ जाती है, अकस्मात कोई ऐसी घटना हो जाती है जीवन में। तो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में अचानक आती है जो हमसे पूछ कर नहीं आती है। तो परिस्थितियां तो आएंगी या समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि ये संसार समस्याओं का सागर है और सागर में लहरें नहीं उठे ऐसा नहीं होता है। लहरें अवश्य उठती हैं, लेकिन उसके लिए हम अपनी सहन करने की और सामना करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सहन करने की और सामना करने की जो शक्तियां हैं वो हमारी भीतरी शक्तियां हैं। यदि हम भीतरी प्रयास करते हैं उसके लिए, तभी इन शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। और उसी के लिए राजयोग या ध्यान या योग अभ्यास हमें मदद करता है। तो आपने यहाँ राजयोग का अभ्यास सीखा है, आप सीख चुके हैं राजयोग का अभ्यास कैसे करें और कैसे अपनी अंतरात्मा की शक्तियों को उस योग अभ्यास के द्वारा जागृत करें। योग अभ्यास में दो चरण हैं जो हमें तनाव कम करने में मदद करते हैं। पहला चरण तो है हम योग की स्थिति में अपनी आत्मा के गुणों का अनुभव करते हैं। पहले चरण में हम आत्मिक चिंतन करते हैं जिसमें आत्मा के गुणों का अनुभव करते हैं। तो जब हम आत्मा के गुणों का अनुभव करते हैं उस समय हमें अपनी कमियों का भी एहसास होता है। यहाँ हमारे अंदर कमी है या मेरे जीवन में ये समस्या है, तो इसका समाधान हम इस तरह से कर सकते हैं। तो उस सेल्फ एनालिसिस के साथ साथ हमारा आधा तनाव कम हो जाता है। दूसरे चरण में हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं। जब ईश्वर से अपना संबंध हम जोड़ते हैं तो वो शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, मन को उससे शांति का अनुभव होने लगता है, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, मनोबल बढ़ जाता है और उससे हमारी परिस्थितियों की सामना करने की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो मन को जब ईश्वर का सहारा महसूस होता है तो कोई भी परिस्थिति हमें बड़ी नहीं लगती है। और यही हम आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी संसार में हुए हैं उनके जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई लेकिन वो सहज उसे पार कर सके, क्योंकि उन्होंने ऐसा महसूस किया भगवान हमारे साथ हैं। चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, चाहे वो क्राइस्ट थे, चाहे वो महात्मा गांधी रहे या मदर टेरेसा रही, जो भी स्पिरिचुअल पीपल इस संसार में हुए हैं। महात्मा सुकरात के जीवन की घटना है, उनकी पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। तो एक बार वो अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे, चर्चा काफी लंबी हो गई और वो रसोई घर में उनके लिए इंतजार कर रही थी। तो जब उसने देखा कि बहुत देर हो गई है और ये अभी भी अपनी चर्चा को समाप्त नहीं कर रहे हैं तो उसको क्रोध आने लगा, उसका स्वभाव ही क्रोध का था। तो उसने कुछ उल्टे सीधे शब्द उनके लिए बोलना शुरू किए और थोड़े समय के बाद जब उसे नहीं रहा गया, उसका धैर्य समाप्त हो गया, तो कहते हैं ना कि क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। तो उसने रसोई में जो पानी का घड़ा भरा हुआ रखा था वो उठाया और वो लाकर के सुकरात के ऊपर डाल दिया। तो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आज तक हम सुनते थे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आज देखा कि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। तो वो हालांकि उसने इतना अपमान कर दिया उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको हंसी में बदल दिया। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता ना, हमारा क्या स्वभाव होता है, हम एक का दो, दो का चार और चार का आठ बना के उसको बोलते हैं, जैसे को तैसा देने की कोशिश करते हैं। इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब हम भी इसको बताएंगे। लेकिन जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है उनके अंदर क्षमा भाव होता है, उनके अंदर अन्य आत्माओं के प्रति रहम का भाव होता है, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग होता है, तो वो इस तरह का व्यवहार नहीं करते, इसलिए उनको इस प्रकार की घटनाओं से तनाव नहीं होता है ना। सामान्य किसी के जीवन में क्रोध की घटना होती है तो कितना तनाव हो जाता है, लेकिन जब हम योग की शक्ति को अपने जीवन में लाने लगते हैं तो हमारा व्यवहार बदलने लगता है और ये घटनाएं तनाव उत्पन्न नहीं करती हैं। फिर दूसरा तरीका है कि हम परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें। हर एक घटना के दो पहलू होते हैं, है ना। अगर किसी परिस्थिति में हमें कोई हानि हो रही है तो हमें कुछ लाभ भी होता है, लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि हम उसकी हानि के पक्ष को ज्यादा देखते हैं, उसका ज्यादा चिंतन करते हैं, इसमें मेरा बुरा क्या हुआ, हम असफल हो गए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, हम ज्यादातर इस दिशा में सोचते हैं। लेकिन उससे जो लाभ हो रहा है अगर उसको हम बार बार चिंतन में लाते हैं तो हमें तनाव कम होता है। इसके ऊपर शास्त्रों में बोध कथा आती है कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और राजा अपने हर कार्य के लिए उस मंत्री से सलाह लेता था। एक बार राजा की उंगली कट गई और उसने अपने मंत्री को दिखाया कि देखो मेरी उंगली कट गई। तो मंत्री ज्ञानी था, उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ, राजा को गुस्सा आया कि मेरा मंत्री मुझे कहता है जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अभी विश्वास पात्र नहीं है। तो वो अपने सैनिकों को आदेश देता है इस मंत्री को जेल में बंद कर दिया जाए। मंत्री को जेल में बंद कर दिया जाता है और वो राजा को शिकार खेलने का शौक था। थोड़े दिनों के बाद वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। शिकार का पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल जाता है, उसके सैनिक पीछे रह जाते हैं और वहां पर आदिवासी कबीले के लोग रहते थे। तो जो कबीले के लोग थे, उस दिन उनका देवी को मनुष्य बलि चढ़ाने का दिन था। उस जमाने में लोग देवियों को मनुष्य की बलि चढ़ाया करते थे। तो ये राजा उनके द्वारा पकड़ा जाता है। वो कहता है मैं आपका राजा हूं, आप मेरी बलि चढ़ाओगे? तो कहते हैं राजा तो सबसे उत्तम पुरुष होता है, ऐसी बलि पाके तो देवी अत्यंत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो राजा को नहीं छोड़ते हैं और उसे अपने पुरोहित के पास ले जाते हैं। तो जब राजा को पुरोहित के पास ले जाया जाता है, वो ये देखता है कि राजा संपूर्ण है या नहीं, यानी उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो देवी नाराज हो जाएगी। तो उसने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। उसने कहा इसकी उंगली कटी है, ये बलि संपूर्ण नहीं है, इसे आप छोड़ दो, कोई दूसरे मनुष्य को ढूंढो। तो राजा छूट जाता है वहां से और जब वो लौट रहा होता है अपने राज्य की ओर, तो उसे मंत्री के वो शब्द याद आते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ। उसने कहा सचमुच आज मेरी उंगली कटी हुई थी, इसीलिए मेरी जान बच गई, नहीं तो आज जान चली जाती। तो जैसे ही वो राज्य में पहुंचता है, वो अपने मंत्री को जेल से अपने पास बुलाता है और सारी घटना सुना के कहता है, मंत्री जी आज मुझे आपकी बात समझ में आई, आपने सच कहा था, लेकिन मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ नहीं था, तो आप भी बच गए और मैं भी बच गया, तो हम दोनों की जान बच गई। तो देखने में घटना दोनों के लिए बुरी थी, उसका भी उसको उनके लिए भी बुरा हुआ और इनके लिए भी बुरा हुआ, लेकिन उसमें उनका भविष्य लाभ छुपा हुआ था, जो कई बार हम वर्तमान में समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, आपने कालचक्र के विषय में भी सुना होगा ये, कि उसमें हमारे लिए कुछ शुभ समाया हुआ है। और यदि जीवन के प्रति ये दृष्टिकोण हम अपनाते हैं, जैसी गीता हमें कहती है, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो इस दृष्टिकोण से हमारा धैर्य बना रहता है। चाहे भले विपरीत परिस्थिति है, चाहे भले उसमें हमारी हानि हो रही है, चाहे हम असफल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें मेरा कुछ भविष्य लाभ है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमें तनाव कम होता है। और किसी भी परिस्थिति को जब हम चुनौती के रूप में लेते हैं, तो वो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करती है, हमारे गुणों का विकास करती है। एक बार बॉम्बे में दो भाई रहते थे, दोनों की स्थिति में बहुत अंतर था। एक भाई संपन्न था और दूसरा गरीब था। दोनों के बच्चे थे, तो जो संपन्न था वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था, उनके पास सब सुविधाएं थी, लेकिन जो गरीब था वो उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और उनको पूरी सुविधाएं भी नहीं थी। तो गरीब भाई के तीन बच्चे थे जो इस बारे में सोचते थे। तो उसका जो बड़ा बच्चा था वो ये सोचता था कि मेरे माता पिता गरीब हैं, वो हमारा उचित ढंग से पालन पोषण नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमें जन्म ही क्यों दिया है। तो माँ बाप को दोष देता था, हर बात में माँ बाप को दोष देता था। जो दूसरा बच्चा था वो हीन भावना का शिकार होने लगा। वो ये सोचता था कि मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, हमारे पास सब सुविधाएं नहीं है, तो इस तरह से उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा। जो तीसरा था वो ये सोचता था कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसे उस आयु में यही समझ में आया कि मुझे अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और पढ़ लिख करके मैं अपने जीवन में कुछ पद प्राप्त करूं। तो उसने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाना शुरू किया और सचमुच अपनी मेहनत से वो एक सर्जन बन गया। तो वो बहुत अच्छा काम करता था और एक बार उसके कार्य के लिए उसे अवार्ड मिला और वहां उसका अनुभव पूछा गया। तो उसने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसका कारण है कि हम गरीब थे, और जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैं एक बहुत साधारण विद्यार्थी था, पढ़ने में भी मेरा कोई बहुत मन नहीं लगता था, लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया और मैं आज यहां तक पहुंचा। तो अब तीनों बच्चों के सामने एक ही जैसी परिस्थिति है ना, लेकिन तीनों का सोचने का तरीका उसके प्रति बिल्कुल अलग अलग है। तो जो तीसरे ने उसको चुनौती के रूप में लिया कि मुझे किसी भी तरह से इस परिस्थिति से बाहर आना है, उसने उसकी आंतरिक शक्ति को विकसित कर दिया और वो अपने जीवन में कुछ बन सका। तो जब भी हम विपरीत परिस्थितियों को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, चुनौती के रूप में लेते हैं, तो उसमें हमें विजय प्राप्त होती है और हमें तनाव कम अनुभव होता है। अब चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन है, चाहे पारिवारिक जीवन है या कार्य क्षेत्र में हम हैं, ये चार बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स, रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल्स अर्थात जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। मानो आप कहीं कार्य करते हैं, आप वर्कर हैं, आपको लोगों के बातों को सुनना पड़ता है, जो भी जो कहते हैं वो करना पड़ता है। कई बार आपको गुस्सा भी आता है लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते, चुपचाप उस गुस्से को दबा लेते हैं। और जब घर में आते हैं तो जैसे ही आपकी पत्नी सामने आती है या बच्चे सामने आते हैं, वो कुछ भी बात कहना चाहते हैं, आप अपना गुस्सा उनके ऊपर निकालते हैं क्योंकि वो गुस्सा आपने अंदर दबाया हुआ है। तो जो ऑफिस का टेंशन है, जो कार्य का टेंशन है, वो आप घर में ले आते हैं। अब जो आपका रोल कार्य क्षेत्र पर था, वो रोल आपका घर पर नहीं है, है ना। घर में वो बच्चे ये नहीं समझते कि वहां की आपकी क्या समस्या थी, उनको तो आपका स्नेह चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और अगर वो आप नहीं दे पाते तो घर के वातावरण में तनाव हो जाता है। या मानो आप ऑफिसर हैं, दूसरे लोगों से काम कराते हैं, ऑफिशियल बने रहते हैं सारा दिन, 8 घंटे उसी रूप में कार्य करते हैं और जब घर लौटते हैं तो भी ऑफिशियल बने रहते हैं और उसी तरह से व्यवहार करते हैं घर में भी, बच्चों के साथ भी, तो वो व्यवहार भी घर वालों को पसंद नहीं आता है। यानी जहां हमारा जैसा रोल है वो रोल हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी और वहां हनुमान का रोल प्ले करने वाला पहुंचा नहीं था। तो जब मैनेजर ने देखा कि बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई है, शुरू करवा देना चाहिए, तो उसने अपने एक वर्कर को बुलाया और कहा कि देखो तुम हनुमान का ड्रेस पहन के आ जाओ। पहला दृश्य बहुत आसान है, रावण की दरबार लगी हुई होगी और वो रावण तुमसे एक सवाल पूछेगा, तुम कौन? तो तुम कहना मैं श्री राम भक्त हनुमान। तुमको सिर्फ इतना ही करना है, फिर हम संभाल लेंगे। उसने कहा ठीक है। वो हनुमान का ड्रेस पहन करके स्टेज पर आया, उसने पब्लिक को देखा, फिर रावण को देखा और उतने में ही रावण ने उसको जोर से पूछा, तुम कौन? वो बेचारा घबरा गया, उसने कहा मैं रामचंद्र रिक्शा वाला। तो यहां भी ऐसा होता है, जब हम टेंशन में होते हैं तो जैसा रोल हमें प्ले करना चाहिए वैसा हम रोल अपना प्ले नहीं कर पाते हैं। तो यहां आपने सीखा है हम कौन है वास्तव में। जो हम करते हैं वो हम नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो इस शरीर के द्वारा कार्य करती है। तो यदि हम आत्मा समझ करके अपना रोल प्ले करते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो अपने रोल से हमारे लिए डिटैच होना आसान हो जाता है। तो आपने राजयोग का अभ्यास सीखा है तो ये आप अभ्यास हमेशा कीजिए। जहां भी आप जाते हैं आप ये नहीं समझ करके जाइए कि हम ये करते हैं, लेकिन ये समझिए कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे इस कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से पूर्ण करना है। दूसरा है रूटीन्स, यानी तनाव कम करने के लिए हमारी दिनचर्या का व्यवस्थित होना आवश्यक है। सारा दिन काम करने के बाद जब थक जाते हैं तो सभी रिलैक्स होना चाहते हैं, और आजकल रिलैक्स होने के लिए घरों में क्या होता है, क्या होता है? हाँ जी, हाँ, कुछ आगे से कह रहे हैं कि टेलीविजन देखते हैं। तो हो सकता है सभी ना भी देखते हों, लेकिन ज्यादातर लोग टेलीविजन देखते हैं, और जब टेलीविजन देखते हैं तो आप जो कुछ भी देखते सुनते हैं वो जरूरी नहीं है आपके तनाव को कम करने वाला हो, हाँ, उससे आपका तनाव बढ़ भी सकता है। और जो एक बार टेलीविजन के सामने बैठते हैं वो देर रात तक टेलीविजन के सामने बैठते हैं और फिर सुबह भी देर से उठते हैं। एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन अगर हम देर से सोते हैं और देर से उठते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या होगी। और यही होता है जब दिन शुरू होता है, आप देर से उठते हैं तो आपको समय पर काम पर जाना है, तो जल्दबाजी में हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, हरी वरी एंड करी की स्थिति होती है। हम अपने लिए समय नहीं दे पाते, आपको कुछ व्यायाम करना है, ध्यान करना है या मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, वो सब समय उसमें चला जाता है। फिर काम शुरू करते हैं तो उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो देखते हैं बहुत काम है तो वो एक काम शुरू करते हैं, वो पूरा नहीं होता, उसके पहले ही दूसरा काम शुरू कर देते हैं। और जब ये देखते हैं कि दूसरा भी पूरा नहीं हुआ है, बहुत सारा काम है, फिर तीसरा भी साथ में चालू कर लेते हैं और एक भी काम वो पूरा नहीं कर पाते। तो वास्तव में पहले एक काम जो शुरू किया है उसे पूरा करें और उसके बाद ही फिर दूसरा काम शुरू करना चाहिए। और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, यानी वो काम करना ही नहीं चाहते, तो वो टाइम पास करते हैं, इधर उधर गपशप करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं और पूरा टाइम होने के बाद देखते हैं कि काम कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं। एक बार एक जगह पर एक ठेले वाला था जो फल बेचता था, तो एक ग्राहक उसके पास आया। उसने देखा कि ये ठेले वाला ऊंघ रहा है। उसने कहा कि तुम बिजनेस कर रहे हो या ऊंघ रहे हो? उसने कहा तुमको क्या है? उसने कहा देखो तुम अच्छा बिजनेस करोगे तो अच्छा कमाओगे। उसने कहा उससे क्या होगा? बोला अच्छा कमाओगे तो तुमको ये ठेला नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हारी एक अच्छी दुकान हो जाएगी। उसने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा देखो तुम्हारी दुकान होगी तो तुम्हें बहुत अच्छी इनकम होगी, उस इनकम से तुम अपना एक घर बना लोगे। उसने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा तुम्हारा अच्छा घर होगा, तुम अपने घर में सुख चैन की नींद सोओगे। उसने कहा वो तो मैं अभी भी सो रहा हूँ। तो तनाव मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, जितना हो जाता है उतना कर लेते हैं, लेकिन हमें एक्यूरेट, एक्टिव और अलर्ट रह करके कार्य करना है, जिम्मेवारी से कार्य करना है। और वो तभी होगा जब हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, समय पर हम सोएंगे, समय से उठेंगे, समय से कार्य करेंगे, समय से भोजन करना, सभी कार्य जब व्यवस्थित होता है तो तनाव कम होता है। तीसरा है संबंध, आपसी संबंध, चाहे हम परिवार में हैं या कार्य क्षेत्र में हैं, हमें निभाने ही होते हैं। और यदि हमारे संबंध अच्छे हैं तो यही संबंध हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपने सुख दुख को बांटते हैं। और ये कहते हैं कि सुख बांटने से दुगना हो जाता है और दुख बांटने से आधा हो जाता है। विदेशों में देखा गया कि वहां पर लोग पालतू जानवर बहुत रखते हैं ना, वहां कुत्ते और ये बिल्ली पालने का बहुत रिवाज होता है। और ये देखा गया कि जो लोग अपने पालतू जानवरों से बात करते हैं उनको हार्ट की बीमारी बहुत कम होती है। तो फिर ये जानने की कोशिश की गई ऐसा क्यों है, तो उनसे पूछा कि आप अपने पालतू जानवर से क्यों बात करते हैं? घर में आपकी पत्नी है, आपके माता पिता हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं आपके, उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो जानवर हैं ये चुपचाप सुनते हैं, लेकिन मनुष्य जो हैं वो काटते हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने दिल की बात तो कहना चाहता है, अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता है, फिर वो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आज मनुष्यों को एक दूसरे को सुनने के लिए समय नहीं होता है, उनका ज्यादा समय शायद टेलीविजन के सामने गुजर जाता है। लेकिन हमें सुनाने के लिए कोई चाहिए। तो आपने यहाँ राजयोग में सीखा है कि हम भगवान से भी बातें कर सकते हैं, तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका तनाव है, आप भगवान को सुनाइए ना, वो चुपचाप सुनेगा, वो किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और ही आपकी समस्या को दूर करने की शक्ति भी आपको देंगे। लेकिन फिर भी जो हम संबंध निभाते हैं उसमें कई बार कुछ नकारात्मक बातें आ जाती हैं जो तनाव उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहली बात जो संबंधों में आती है वो है अपेक्षाएं। यदि हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं एक दो से, पति सोचता है कि ये मेरी पत्नी है, इसको मेरे लिए सब कुछ करना ही चाहिए, अगर वो थोड़ा भी कम करती है तो उनको गुस्सा आता है कि मेरी पत्नी ने ये काम नहीं किया। या अगर पत्नी पति से बहुत अपेक्षा रखती है और पति वो कार्य नहीं करता है तो उसको तनाव होने लगता है। या जैसे आपने कहा कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चों से अपेक्षा रखते हैं लेकिन बच्चे वो अपेक्षा पूरी नहीं करते हैं। एक बार एक भाई हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि बहन जी मुझे हार्ट अटैक हुआ है और उसका कारण भी मुझे पता है, मेरे माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था। आज उन सभी भाई बहनों को मैंने पालन पोषण किया, वो सब बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब स्थिति यह है कि मुझे उनके सहयोग की जरूरत है, लेकिन मुझे सहयोग देना तो दूर, वो मेरा एहसान भी नहीं मानते कि मैंने उनके लिए कुछ किया। मेरे को बहुत दुख होता है। डॉक्टर कहता है आप सोचो नहीं, अगर आप सोचेंगे तो आपको फिर से हार्ट अटैक हो जाएगा या आपकी जान के लिए खतरा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पता है कि मैं नहीं सोचूं, लेकिन मैं ये सोचने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे बार बार याद आता है कि मैंने इनके लिए कितना किया और आज जब मेरा समय आया तो ये मेरे को पूछते भी नहीं है। तो जीवन में ऐसा हम सोचते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसको भी मेरे लिए इतना करना चाहिए। लेकिन यहां भी गीता हमें ये सिखाती है कि हम निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करें, किसी के लिए भी जो हम करते हैं इस भाव से नहीं करें कि वो हमारा हमें उसका प्रतिफल देगा। अगर वो उसका प्रतिफल हमें देते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी देते हैं तो भी हम संतुष्ट रहें, तभी हमारे संबंधों को हम अच्छी रीति से निभा पाएंगे। तो हम अपने संबंधों में कम से कम अपेक्षाएं रखें, जितनी अपेक्षा कम होगी उतना ही कम तनाव होगा। और दूसरा जो संबंधों में आता है वो इसमें दिखाया है मिस्टर छाल, जेलसी, हेट्रेड, एंगर एंड लेग पुलिंग, चार शब्द हैं इसके अंदर। ईर्ष्या की भावना, वैर विरोध की भावना, क्रोध की भावना और नीचा दिखाने की भावना। तो जहां ईर्ष्या की भावना आ जाती है आपसी संबंधों में, जिसको कहते हैं चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी एक अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है। संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों को दुखी देख करके दुखी हो जाते हैं, उनको दूसरों पर रहम आता है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो दूसरों को दुखी देख करके सुखी होते हैं। अच्छा, ये दुखी हैं तो उनको अच्छा लगता है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो दूसरों को सुखी देख करके दुखी होते हैं, यानी वो दूसरों को सुखी नहीं देख सकते हैं, और वो तीसरे प्रकार के लोग ईर्ष्यालु प्रकृति के लोग होते हैं। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कौन सी प्रकृति के हैं, और यदि हमें ईर्ष्या होती है तो हमें उस भावना को बदलना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से हमारा स्वयं का ही नुकसान होता है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता है। ईर्ष्या को आप शुभ भावना में बदलिए। और सचमुच यदि आप भी उन्नति करना चाहते हैं, ज्यादातर ईर्ष्या होती है कि आप देखते हैं आपका साथी तो बहुत उन्नति कर रहा है, समृद्ध है, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं, तो फिर आप अपनी योग्यता को बढ़ाएं ताकि आप भी जीवन में उन्नति करें, तो ईर्ष्या कम होगी। दूसरा है क्रोध की भावना जब संबंधों में आती है ना, आपने क्रोध के ऊपर काफी सुना होगा। जहां भी क्रोध आता है हम मुख से ऐसे शब्द बोलते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। तो क्रोध को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जहां भी संबंधों में क्रोध होता है वहां कहते हैं पानी के घड़े भी सूख जाते हैं, यानी घर में इतना तनाव होता है उसके कारण। क्रोध कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको जब गुस्सा आ रहा है उस समय आप चुप रहिए। हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये संभव है। उस समय आप चुप रहिए कि हम ये बात कहेंगे लेकिन थोड़े समय की बात कहेंगे। आप वही बात को भले 10 मिनट के बाद कहिए, आप उसको दबा भी नहीं रहे अपने अंदर, लेकिन 10 मिनट के बाद जब आप उस बात को कहेंगे तो शायद आपको ये समझ में आ जाए कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लगता है कि सामने वाले की गलती है, तो फिर हम वही बात अगर शांति से कहते हैं, प्रेम से कहते हैं, तो वो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है। एक बार एक जनरल मैनेजर ने अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उसने बहुत पानी पिया। मीटिंग बहुत अच्छी रही। बाद में जब वो मीटिंग से बाहर निकले तो उनके असिस्टेंट ने उनको पूछा कि साहब आज आप बहुत पानी पी रहे थे, क्या बात है, आपको कब्ज है या आप वाटर थेरेपी करते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, ना तो मुझे कब्ज है ना मैं वाटर थेरेपी करता हूं, लेकिन आज मैंने क्रोध की थेरेपी किया। जैसे ही मुझे गुस्सा आता था मैं एक गिलास पानी पी लेता था और पानी पीने के बाद मेरा गुस्सा शांत हो जाता था और जो भी बात मैं कहता था वो शांति से कहता था और सुनने वाले भी शांति से जवाब देते थे, इसीलिए मीटिंग बहुत अच्छी रही। तो जरूरी नहीं है जब हमको गुस्सा आ रहा हो तो हमारे सामने एक गिलास पानी हो, लेकिन कोई भी तरीके से हम अपने गुस्से को थोड़ा सा पोस्टपोन करें। आपने यहाँ ओम शांति सीखा है, आप मन में ओम शांति कहिए। 10 बार उस शांति की स्थिति में ओम शांति कहेंगे तो गुस्सा सचमुच शांत हो जाएगा, आवेश कम हो जाएगा। यहाँ जो भी भाई बहने आते हैं उन सबका ये अनुभव है कि जब वो योग का अभ्यास करते हैं तो उनका गुस्सा काफी कम हो जाता है, या तो गुस्सा आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो उसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ और बातें जो हमारे संबंधों में आती हैं वो है, जब कोई हमारी आलोचना करता है या निंदा करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन कहा गया है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। निंदा करने वाला हमारा मित्र कैसे है? क्योंकि वो हमारी कमी बताता है। मनुष्य का ये स्वभाव है कि उसे अपनी कमी स्वयं नहीं पता चलती, उसे दूसरे ही बताते हैं कि उसके अंदर ये कमी है। तो उस कमी को यदि हम दूर कर लेते हैं तो जीवन में हमारी उन्नति होती है। कहने वाला भले ही उस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहता है, लेकिन फिर भी वो 1% हमारे अंदर होती जरूर है। मानो आप ऑफिस जाते हैं और आप रोज टाइम पर जाते हैं, लेकिन किसी कारण से 2-3 दिन आप लेट पहुंचते हैं, तो जो आपका निंदक होगा वो कहेगा कि ये तो इसकी आदत है, ये हमेशा ही लेट आता है। अब उस बात को उसने इतना बढ़ा के कह दिया, हालांकि उसके पीछे कोई कारण है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसके पीछे आपकी कोई कमी है, आपकी कोई थोड़ी सी लापरवाही है, तो उसे हम दूर कर लें तो उससे हमारा जो रिपोर्ट है वो अच्छी बनेगी। तो अपनी कमी को हम स्वीकार कर लें तो तनाव नहीं होगा। लेकिन यदि लगता है कि नहीं, सिर्फ नीचा दिखाने के कारण ही आलोचना की जा रही है, ऐसी कोई कमी मेरे अंदर नहीं है, तो फिर हम उसको सुनते हुए भी नहीं सुने, उसे स्वीकार नहीं करें। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। न, यदि हम स्वीकार नहीं करते तो कोई भी हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। और लास्ट है करेक्शन, यानी कई बार जब हमसे गलती हो जाती है तो एक अहम भाव हमारे अंदर होता है जिसके कारण हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यदि हम अपनी गलती मान लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाती है, नहीं तो फिर छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। और यदि दूसरों से गलती होती है हमारे संबंधों में तो उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए, दूसरों की गलतियों को अपने मन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप गलतियों को मन पर रखते हैं फिर उसी अनुसार आप दूसरों से व्यवहार करते हैं तो आपके संबंधों में हमेशा तनाव बना रहेगा। तो इसीलिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो। तो हर मनुष्य से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती ही है, तो उनकी गलतियों को चित पर ना रख करके उसे क्षमा कर देना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम प्रतिदिन के जीवन में आप कुछ समय राजयोग का अभ्यास करते हैं, अपने चिंतन को सकारात्मक बनाते हैं, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं और अपने संबंधों को इन बातों का ध्यान रख करके मधुर बनाए रखते हैं, अच्छा बनाए रखते हैं, तो मैं समझती हूँ काफी हद तक आप तनाव मुक्त, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का अनुभव कर सकेंगे। तो तनाव मुक्त जीवन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहीं मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।
जाएगा।